गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया दुहा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमा। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमां च।
आप लोग सभी भक्ति का साधन करने के लिए आए हैं या भक्ति का साधन कर रहे हैं, किंतु शास्त्रों में भक्ति साधक किसको कहा गया है? वी हैव कम टू गुरुदेव टू प्रैक्टिस भक्ति योग एंड वी आर चैंटिंग रिमेम्बरिंग, बट व्हाट शास्त्र हैज टोल्ड, एपिक्स आर टेलिंग। सच्चा भक्ति का साधक कौन है, आज इस पर हम लोग विचार करेंगे और भक्तों के भी विचार सुनेंगे, हम भी कुछ बोलेंगे। फर्स्ट राधानाथ ब्रह्मचारी विल स्पीक अबाउट दिस, व्हिच रियली भक्ति साधक। यू कैन स्पीक, कम ऑन हियर एंड स्पीक एंड ऑल्सो यू विल हैव टू टेल दैट आई एम प्रैक्टिसिंग लाइक दिस। सच्चा साधक वो सबसे पहले उन्हीं का गड़बड़ है, अभी पूछेंगे, याद ठीक करके बतलाओ तुम अब बकरेश्वर और कृष्णदास भक्ति साधक किसको कहते हैं, अभी बतलाना पड़ेगा। बोलो क्या नाम? धन महाराज जी ने इस प्रसंग पर प्रारंभिक बातें सब ठीक कही। हम लोग केवल शास्त्र कहने से अभी श्री रूप गोस्वामी और उसके अनुगत जो रूपानुग वैष्णव हैं उनके विचारों को हम लोग ले करके उसी पर विवेचन करेंगे, विशेष करके रूप गोस्वामी का। हमने कहा जो भक्ति साधक, तो पहले भक्ति और फिर साधक, भक्ति कहने से ही अन्याभिलाषिता इस श्लोक में सब कुछ आ गया। ये कहाँ से कहाँ तक, एकदम प्रारंभ से लेकर महाभाव की अंतिम स्थिति रूढ़ अधिरूढ़ मादन मोदन मादन तक ये लागू होगा, और एकदम निम्न श्रेणी से श्रद्धा से ये आरंभ होगा। पहले ये देखना है भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या है, यही है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरोत्तम। ये तो उसका स्वरूप लक्षण हुआ। साधक उसको कहेंगे, साधारण साधक शब्द को कह करके तब फिर भक्ति साधक बतलाएंगे, जब साधक के साधक जो साधना करता है किसके लिए, अपने इंद्रियों के द्वारा, प्राकृतिक इंद्रियों के द्वारा जो हम लोगों के पास में है। अभी मन भी प्राकृत हमारा है, और जितनी इंद्रियां हैं ज्ञान और कर्म की, ये सब इंद्रियां हैं। जब इन इंद्रियों से अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यानावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, जब इसका साधन होगा, जब इसका साधन हुआ किस चीज का, ये स्वरूप सिद्धा भक्ति का, इसमें सबसे पहले साधु संघ, साधु संघ के बाद में गुरुकरण इत्यादि। गुरुकरण कौन सा? शुद्ध गुरुकरण, जिसको क्या कहते हैं, नहीं नहीं उसको विद्वद रूढ़ी से दीक्षा, केवल कान फुकुआ गुरु नहीं और उससे सुन लिया बस हो गया, ऐसा नहीं। वो कौन सा बतलाया, विद्वद रूढ़ी वृत्ति से समझ करके साधु से ये समझ लिया, भक्ति किसको कहते हैं, कुछ सुना, कुछ धारणा हुई और कृष्ण की सेवा की वासना हृदय में आई, शास्त्रों पर गुरु वाक्यों पर और कृष्ण के वाक्यों पर दृढ़ श्रद्धा हुई। इसके बाद में द्वितीय साधु संघ में ये गुरुकरण होगा शुद्ध, और उसकी दीक्षा होगी दिव्य ज्ञान, अभिज्ञान के रूप में दिव्य ज्ञान आया, कृष्ण के साथ में संबंध भी गुरु के द्वारा स्थापित किया गया। उस समय साधु संघ में सुनते 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 भजन क्रिया आएगी, और भजन क्रिया के बाद में अनर्थ भी कुछ कुछ जाएगा, दूर होगा। वो क्या है भागवत का श्लोक, हाँ, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भक्ति निष्ठी। अब उसकी निष्ठा भी धीरे धीरे जितने परिमाण में अनर्थ दूर हो रहा है उतने ही परिमाण में उसकी निष्ठा भी अब आने लग गई है। ये निष्ठा भी ज्ञान पूर्वक है, जानबूझ करके ये स्वाभाविक रूप में रुचि के साथ में अभी नहीं है। इस अवस्था में अनर्थ भी कुछ कुछ दूर हो गया है, तत्व ज्ञान भी हो गया है, गुरु की सेवा भी वो कर रहा है, उस समय उन लोगों के मुख से ये सुनेगा, रुचि किसको कहते हैं। रुचि भी दो प्रकार की बतलाई, वो सब विधिवत सुनेगा और इसके बाद में रुचि दृढ़ होने पर, परिपक्व होने पर, वो आसक्ति होती है, वो कैसे होती है, एक होती है साधन भजन के प्रति और दूसरी कैसे होती है भजनीय। इतना तक हुआ, सुना है अभी, आया नहीं, आया नहीं है किंतु सुना है ये, और इसके बाद ये भी सुना भाव किसको कहते हैं, भाव किसको कहते हैं, भक्तों के, रागात्मिक भक्तों के हृदय में संबित और संधिनी, संबित और लादिनी का जो सार है क्या है, यही तो सेवा, जो नित्य सिद्ध या जो रागात्मिक भक्तों के उनके हृदय में है, उनका अनुगमन करने से हृदय में शुद्ध सत्व आता है, यही उसी को रति कह। यह सब सुना किंतु आया कुछ नहीं, ऐसा जान करके जे ये भाव इतना उन्नत है गुरु वैष्णव को अनुगत्य में, तब ऐसे भाव को भाव क्या है, सिद्ध भावा क्या है, नहीं कृति साध्या भवेत साध्य भावा, कृति साध्या भवेत साध्य भावा, साध्य भावा किसको कहते हैं, साधन के द्वारा जो सिद्ध होता है उसको साध्य भावा कहते हैं। किंतु फिर रूप गोस्वामी देखते हैं कहीं लोग गड़बड़ न समझ लें। जब भाव साधन के द्वारा जो जो सिद्ध होता है वो नित्य नहीं है, वो तो साधन के द्वारा हुआ, इसलिए नित्य नहीं हुआ। इसलिए फिर कह देते हैं दोहरा करके, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यं परीक्षा। क्या भाव तो सिद्ध है, किंतु जिन साधनों से यह भाव सिद्ध होता है, साधित होता है, कैसे होता है? कृतिश साध्या भवेत साध्या। अपनी जो प्राकृत इंद्रियां हैं, कृति माने इंद्रियां, इन इंद्रियों के द्वारा जब इस परम उन्नत भाव को प्राप्त करने के लिए जब कुछ भी इंद्रियों के द्वारा जो कुछ किया जाता है किंतु भाव के लिए, तब उसको कहते हैं साधक, उसको कहते हैं साधक। कैसी किस स्थिति में होगा, इसके लिए पहले लक्षण बताया हमने, वो समझेगा जो भाव किसको कहते हैं, और फिर वो ये भी समझेगा वो नित्य सिद्ध है। तो वो कैसे करेगा? गुरु वैष्णव के आनुगत्य में इन विषयों को जानकर भाव को उत्पन्न करने के लिए, प्रकट करने के लिए, जो नित्य सिद्ध है उसके लिए इन इंद्रियों से जो साधन होगा, क्या? श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम, एक ये, और दूसरा क्या है? साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वार्षिक मुक्ति श्रद्धा। इनमें ये दूसरा वाला है जरा कुछ और विशेष है, ये कुछ रागानुगा भाव संबंध लेकर के आया। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं जो साधन है इंद्रियों के द्वारा जो करते हैं, वो प्रेम तो लाएगा, भाव तो लाएगा, किंतु वह भाव कुछ वैधि भक्ति से संबंधित वो भाव होगा। जो इस प्रकार से वैष्णव जो हैं, जो रागानुगा हैं वैष्णव, उनके अनुगत्य में जब साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्रीमूर्ति श्रद्धाय सेवन ये सब करेगा इंद्रियों के द्वारा धीरे धीरे, तब उसको कहेंगे साधक। बिल्व मंगल इत्यादि के लिए जो कहा गया है वो भाव भक्ति के साधक हैं, भाव भक्ति में आ गए हैं और प्रेम के लिए अब साधन कर रहे हैं, उनको अभी साधक ने, ये जो हम कह रहे हैं ये पहले वाले का ये इसके लिए में वो नहीं है, इसे बहुत ऊपर है। साधारण रूप में गुरु पदाश्रय करके स्वरूप सिद्धा जो भक्ति है उसको अपने इंद्रियों के द्वारा साधन कर रहे हैं, किस लिए? जो ये जो भाव बहुत उन्नत है उसको अपने हृदय में प्रकट कराने के लिए, तब ये होगा। इसमें सबसे अधिक ये बात है कि ये लोग विशेष करके भावुक जो भक्त हैं, रसिक भक्त हैं, साधन करके बहुत कुछ अग्रसर हो गए हैं, उनके अनुगत्य में भाव को साधन करने के लिए ये साधन करें इंद्रियों के द्वारा, तब ये भक्ति के साधक कहले जाते हैं। किंतु भाव को उद्देश्य करके और संबंध ज्ञान युक्त होकर के गुरु पादाश्रय करके धीरे धीरे वो उनके अनर्थ भी दूर हो चुके हैं, थोड़े से अभी अनर्थ हैं, किंतु इस स्थिति में भी शुद्ध भक्तों का आश्रय करके विशेष करके नाम संकीर्तन कलयुग में ये यदि करते हैं तो उनको साधक भक्त कहते हैं। और भी हैं किंतु साधारण रूप में इसका यही है। तो ऐसे लोग धीरे धीरे अपने हृदय में भाव को प्रकट करते हैं। भाव माने क्या? वो जो बतलाया, हाँ, वो शुद्ध सत्व इनके हृदय में प्रकटित होगा, ये भगवान और भक्तों की कृपा से होता है। ऐसे साधारण रूप में नहीं, तब उनको भक्ति का साधक कहा जाए। यदि ऐसे ही वो श्रवण कीर्तन इत्यादि कर रहे हैं, हरि नाम भी एकला करते हैं, तो वो साधक नहीं कहलाएंगे, भक्ति साधक नहीं कहलाएंगे। जब भावावस्था को समझकर और उस भाव भक्ति को हृदय में लाने के लिए अपनी इंद्रियों के द्वारा ठीक ठीक रूप में जो साधन करेंगे, तब उनको भक्ति का साधन। इसलिए पहले दीक्षा इत्यादि हो जाना जरूरी है, संबंध ज्ञान भी हो जाना जरूरी है, अनर्थों का दूर हो जाना भी जरूरी है। किसको साधन, किसको निष्ठा कहते हैं, रुचि कहते हैं, आसक्ति कहते हैं और फिर भाव कहते हैं, इसको भी ज्ञान हो जाना चाहिए, और तब फिर जो साधन करते हैं वो साधन। इसलिए आप लोग भी ऐसा ही चेष्टा करें। बिल्लो मंगल जी का नहीं बेटी, वो प्रेम भक्ति के साधक हैं। साधक प्रेम भक्ति के लिए, ये साधारण भाव भक्ति के लिए नहीं। दोनों हो सकते हैं उसमें कोई, किंतु वो रागानुगा हैं। प्रहलाद महाराज बधि भक्ति के साधक हैं, किंतु महाभागवत हैं, अब साधक नहीं हैं, कुछ ऊपर उठ गए हैं, बहुत ऊपर। आज यहीं तक रहे, कल हम 5 बजे से 5:30 बजे के अंदर दिल्ली जाएंगे हम लोग, और दिल्ली से परसों रात में हम लोग रशिया जाएंगे, और रशिया से हम लोग 8-10 दिन का प्रचार है वहाँ के, रूस की राजधानी मास्को और लेनिनग्राड और कहीं और 3 जगहों में जाएंगे, सारे देशों के भक्त लोग आएंगे, और 7-8 दिन तक प्रचार करके एक दिन विश्राम करके 6 तारीख को हम दिल्ली में पहुँचेंगे, और 6 तारीख को हम वहीं पर विश्राम करके 7 या 8 को यहाँ पर हम आएंगे। तब तक झूलन भी निकट आएगा, हम लोग वृंदावन में झूलन मनाएंगे। हमारे तुम उन लोगों से बातचीत कर लेना, और पुरंदर जी उसका छपवा करके रखेंगे, उसका भी हम लोग वितरण करके, और भी जैसा हम लोग करते हैं वैसा से। आप लोग शुद्ध शुद्ध भक्ति का साधन करें और सबका कल्याण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावन
राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमः। बहुत विलंब हो गया हमारे आने में, मैं तो सोच रहा था जिस 7 से लेकर 8 तक हम लोग प्रवचन करेंगे, किंतु विलंब है। जैसा भी हो 10-15 मिनट सावधानी से सुनेंगे और उसको समझ करके हृदय में धारण करने की भी चेष्टा करेंगे। परीक्षित महाराज सांप काटने वाला है, 7 दिन में तक्षक डसने वाला था, अपना चित्त उधर में क्यों ले जाते हैं? चुपचाप शांति से इधर उधर मत, फिर उधर क्या बात है उधर, तो उसको कोई ठीक करे। तो
सांप काटने वाला था,
सांप उनको काटने वाला है, और ऐसा सांप डसने वाला है जो उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। ऋषि का ऐसा अभिसंपात है, मरना अवश्यंभावी उनको है। 7 दिन का समय है, हम लोगों का कोई समय नहीं, कल भी हो सकता है, आज हो सकता है, रात में भी हो सकता है, कोई ठीक कोई गारंटी नहीं। उनको तो 7 दिन की मोहलत थी, किंतु आप लोग समझ ही रखिए हम लोगों का कोई ठीक नहीं है। अभी पटना में देखिए क्या हो गया, 1 सेकंड में बड़े बड़े धनी मानी नवयुवक लोग देखिए काल के गाल में समा गए। अभी फ्रांस की न्यूज़ है, वहाँ पर 154 या 155 लोग
हवाई जहाज से जा रहे थे, कोई भी बचे नहीं। क्या वे एक सेकंड आगे भी जानते थे? नहीं जानते थे। परीक्षित महाराज जी खाना पीना छोड़कर, पानी पीना छोड़कर गंगा नदी के ऊपर में बैठ गए। इतने में सारे भारतवर्ष के बड़े बड़े अनुभवी ब्रह्म ऋषि लोग, देव ऋषि लोग वहाँ पर उपस्थित हुए। नंगा धड़ंगा एक बालक भी आ गया, सुखदेव गोस्वामी जी आ गए, जन्म से ही परम मुक्त, कपड़े की भी जरूरत नहीं। उनको व्यास गद्दी पर बैठाया गया, व्यास गद्दी पर बैठाया गया और वो कुछ कहने लगे वो लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान् मनुष्यम अर्थतम अनित्यमपि हधीर तृणम जतेत न पतेत अनुमत्तु जावत निशेषायक विषय खलु सर्वतस्या। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, ऐसे ही नहीं मिल गया। कोटि कोटि जन्म तक सुअर गधे कुकर न जाने क्या क्या हुए और इसके बाद में ये मनुष्य जन्म मिला। और इस यह ऐसा जन्म है अर्थद अर्थ को देने वाला है, अर्थ माने रुपया पैसा नहीं। जन्म मरण से मुक्ति दिला करके आपको नित्य सुख और शांति देने वाला है। आपको माने क्या, पहले ये समझेंगे, मैं और आपको शरीर मत समझो। शरीर तो अभी मरा हुआ है, आत्मा निकल जाएगी, ये शरीर कुछ नहीं रह जाएगा, सब भरा रह जाएगा। दो दिन कुछ ना करो तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, जला दो तो भस्म हो जाएगा। ऐसा ये शरीर, किंतु अर्थद परमार्थ को देना, परम अर्थ को, कृष्ण की सेवा दे करके ये संसार से उबार लेगा। अर्थात अनित्य, किंतु फिर भी अनित्य है, कोई ठीक नहीं। भगवान की बड़ी कृपा है जो अभी तक बचे हुए हैं, विशेष करके दिल्ली शहर में निकलते हैं, कब क्या हो जाए एक्सीडेंट कोई ठीक नहीं। घर में आकर के प्रभु को प्रणाम कीजिए, आज लौट करके आ गया सुरक्षित। अनित्य अपि इह धीर, धीर जो व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, कौन से बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो भविष्य को सोचते हैं, कैसे हम सुखी रह सकते हैं। केवल अभी के अभी नहीं, हमारा राष्ट्र, विश्व का संयुक्त राष्ट्र, बड़े बड़े विद्वान अभी के लिए सोच रहे हैं और अब कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, उनकी शक्ति भी नहीं है जो कुछ कर सकें। हम लोग की स्थिति ऐसी है जैसे कलकत्ते में कसाई खाने हैं और वहाँ पर 400-500 गाय और बूढ़े भैंस और ये सब जानवर लेकर के खड़ा कर दिया कसाई खाने के सामने और उनको बारी बारी से एक एक सौ को भीतर ले जा रहे हैं और उन्हें काट रहे हैं। तो 100 का बैच ले गए और बाकी 900 बाहर में खड़े हैं, उनके सामने हरा घास, हरी घास थोड़ी सी डाल दी और उस हरी घास के लिए वो लोग परस्पर लड़ रहे हैं हरी घास के लिए। वो ये नहीं जानते जो अभी दो मिनट में हमारी बारी आएगी और हमें काट देंगे। हम लोग भी वैसे ही मूर्ख हैं, मरना जरूर है, बाप दादे तो चले गए, एक बैच में चले गए हैं, कितने बैच चले गए हैं और हम लोग अभी आए हैं उसी के मौत रूपी कसाई खाने के सामने। और कब जाना है, अभी बैच आने वाला है और लड़ रहे हैं राज्य के लिए, ये देश हमारा है, वो देश हमारा है, ये हमारा है, ये तेरा है। यहाँ तक कि पत्नी और पति में भी लड़ाई लग रही, बेटे और बाप में भी लड़ाई लग रही, भाई भाई की तो बात ही नहीं। किंतु कब क्षण में हमारी मृत्यु हो जाएगी ये पता नहीं, किंतु धीर व्यक्ति कौन है जो ये समझता है हमको जाना है, हम जो कुछ कर रहे हैं ये हमारे साथ में कुछ नहीं जाएगा, तो इसके लिए वो इसके अंदर में आत्मा और परमात्मा है उनको जानने की चेष्टा करेगा, उसके लिए कुछ प्रयत्न करेगा, इसलिए वो कह रहे हैं तूर्णम जतेत न पतेत अनुमित्य जावत। जब तक इस शरीर का पतन नहीं हो जाता उसके पहले ही चेतो और अपना कल्याण करो, घास के लिए मत लड़ो हरी, ये हरी घास क्या है, रुपये पैसे प्रतिष्ठा इज्जत पद। अभी संसद में क्या हुआ, किस लिए लड़ते हैं, हम प्रधानमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री होते हैं तो फिर क्या होता है। अभी ठाकरे जी का बम्बई में आप लोगों ने अभी सुना होगा, एक क्षण में बड़ा उल्लास और एक क्षण में ही दूसरे क्षण में फिर जाने कैसे कैसे ये बदलता है, ये सब इन चीज़ को समझो। तो धीर व्यक्ति वो है नित्यकाल के लिए भविष्य के लिए वो सोचता है जी हम कैसे सुखी और शांति रहें। ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है विश्व में जो अर्थ पाकर प्रतिष्ठा पाकर अपने परिजनों को पाकर के वो सुखी हो सका, ऐसा कोई उदाहरण आज तक नहीं है। इसके लाखों करोड़ों उदाहरण हैं जो आत्मज्ञान लाभ हुआ और भगवान की कृपा से गुरु की कृपा से आत्मा को समझ करके भगवान का नाम करता हुआ वाल्मीकि तुलसी व्यास सुखदेव गोस्वामी नारद इत्यादि करोड़ों करोड़ों प्रहलाद इत्यादि सब अभी इस युग में भी है इसके उदाहरण है, इसमें सुखी लोग हो गए। इसलिए तूर्णम जते तना पते त अनुमित्यु जावत, जब तक यह शरीर नहीं गिर जाता जब तक भगवान ने दिया है उसके अंदर में जल्दी से जल्दी आत्मा और परमात्मा को जान करके सदा के लिए इस जगत को छोड़ना है, फिर कभी नहीं आना है माता के गर्भ में। ये कल्याण क्या है इस पर थोड़ा सा विचार करना है। उसी सभा में परीक्षित महाराज जी की सभा में करोड़ों लोग आए हैं, बहुत लोग बड़े बड़े उच्च कोटि के संत जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया है वो लोग भी आए हुए हैं। वो लोग सब मिल करके सुत गोस्वामी से पूछ रहे हैं, अभी काल बहुत भयंकर कली आ रहा है, कली माने क्या, कलहम लाती, बिना कारण का ही कलह करता है, कोई कारण नहीं है तो भी लड़ेंगे बिना कारण, कारण ढूंढ करके लड़ते हैं, कोई कारण नहीं बन रहा है तो ऐसे ही कोई जा रहा है उसके पैर में पैर लगा करके गिर गया वो और झगड़ा करा, इसलिए इसको कली कहते हैं। पति पत्नी भाई भाई बहन पिता माता परिजन दूसरे देशों से ये परस्पर झगड़ा होगा, तो इस कली युग में बहुत कम अल्प आयु है, पहले लाखों वर्ष की आयु होती थी हजारों वर्ष की आयु होती थी फिर 100 में आया, ये भी कोई गारंटी नहीं जे 100 वर्ष आप जीवित रहेंगे ही, आयु कम है और समस्याएं बहुत हैं, बहुत जन्म से ही कुछ ऐसी तकलीफ हुई जिसका कोई निराकरण कोई दवा नहीं। हम जाते हैं लाखों करोड़पति लोग हैं और उनके बालक को जन्मते ही कुछ ऐसा रोग होया जो कोई डॉक्टर कोई इलाज नहीं कर रहा, कोई हो नहीं सकता संभव नहीं, और वो दुखी हैं। इसलिए कहते हैं कलयुग में समस्याएं हैं, अल्प आयु है, पद पद पर समस्याएं हैं और कैसे हैं, सौभाग्यहीन हैं, सुखी नहीं हैं, सभी दुखी हैं, ऊपर से बड़े ठाट हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको कोई समस्या नहीं हो और ऊपर से सभी हंस रहे हैं बनावटी हंसी हंसते हैं। एक लड़की कहती थी बहुत अच्छे घर की परिवार की उसकी शादी हुई ससुराल में गई, मैंने पूछा जो सुखी है, उसने कहा जी महाराज जी हम आपको बतलाते हैं हमको सिखलाया जाता है कि तुम हंसती रहना मुस्कुराती रहना, कोई गला भी काटे तो मुस्कुराते रहो, यही है स्थिति। कितनी समस्या है। इसलिए आत्मा कैसे सुखी हो सकती है आप बतलाइए। आप वेदों के आचार्य हैं, पुराणों को आपने पढ़ा है, बहुत से संतों का आपने संग किया है, इसलिए सबका जो सार तत्व है हमको बतलाइए सहज रूप में, जो हमारा कल्याण है कैसे हो सकता है। उन्होंने अपने गुरु जी को प्रणाम किया, सुखदेव गोस्वामी को, वो कहने लगे स्वयं पुंसान परो धर्मो जतो भक्ति रधोक कजे अहेतुक का प्रतिहता जयात्मा संतोष। आत्मा उसी की खुश रह सकती है। किनकी? पहले ये समझो, आत्मा और अनात्मा, ये शरीर अनात्मा है, आत्मा इसके अंदर में है। एक दिन भी एक मोमेंट के लिए ये आत्मा निकल जाए तो क्या होगा? शरीर पड़ा रह जाएगा, कोई भी मूल्य नहीं। शरीर कभी कभी मदिरा पान करके भी बड़ा खुश हो जाता है, मांस मछली खा करके भी हो सकता है, अंड संड खा करके भी हो सकता है, गंदी चीज़ों को करके भी खुश रह सकता है। अभी हाल ही में कुछ पाकिस्तान के लोग नेपाल से एक विमान किसी प्रकार से अपहरण करके ले गए, बड़ा मुश्किल था काम। जब अपहरण करके ले तो बड़े खुश हुए ने जो हम अपने काम में सफलता प्राप्त किए, किंतु उनको लाभ क्या मिला? कुछ लाभ नहीं। तो शरीर का प्रसन्न होना एक बात है, आत्मा का प्रसन्न होना एक बात है। हम खाते पीते हैं शरीर की पुष्टि के लिए, आत्मा के लिए क्या करते हो? आत्मा के लिए ये विचार करना है, यदि भगवान का नाम किया, भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भी काम किया, ठाकुर जी को एक बार शरीर सिर भी झुका दिया, ये सब उसमें काम आएंगे, ये भी प्रचुर नहीं है, बहुत थोड़ा है, तभी उसमें आएगा। एक बार भी यदि किसी प्रकार से श्रद्धा से भगवान के चरणों में अपना शरीर झुका दिया, फिर जगत में नहीं आना है। अभी तो नहीं समझते हैं कि बात ठीक है, इसलिए कहते हैं सवई पुंसांग परो धर्म, मनुष्य मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए, मनुष्य के लिए ही नहीं प्राणी मात्र के लिए यह परम धर्म है। धर्म बहुत प्रकार के होते हैं, पति के प्रति स्त्री का धर्म, स्त्री के प्रति पति का धर्म, भाई भाई के प्रति धर्म, देश के प्रति धर्म, समाज के प्रति धर्म, शरीर का धर्म, मन का धर्म, बहुत प्रकार के ये धर्म होते हैं, किंतु ये चिरस्थाई धर्म नहीं है। सबई पुंसांग परो धर्म, सबसे श्रेष्ठ और परम धर्म क्या है? भगवान जगत के सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले का भी प्रभु का प्रभु जो है वो कृष्ण है, बंसी बजाने वाले। बंसी बजाने वाले अबोध जैसे दिखते हैं, मैया उनको पकड़ करके बांध देती है, गोपियों के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, सखाओं से साथ में जूठे खाते हैं, किंतु हैं वो कौन? समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं। उनके प्रति यदि अहेतुकी भक्ति हो, अनकंडीशनल सरेंडर करके उनकी प्रीति के लिए कुछ भी करते हैं तो ये परम धर्म है। आजकल बड़े बड़े प्रवचन होते हैं, आपके दिल्ली में तो लाखों लोग यहाँ पर एकत्रित होते होते हैं, किंतु भागवत और गीता से संबंध उनका कुछ नहीं रहता, रामकृष्ण से उनका कोई संबंध नहीं रहता। इसलिए ऐसे धर्मों के प्रति नहीं जाना, उसे आत्मा प्रसन्न नहीं हो सकती। उन गुरुओं का ही चित्त प्रसन्न नहीं है, वो पैसे के लिए मर रहे हैं, जब प्रणामी कितनी आई बस इसी में वो रहते हैं, रुपया जैसे तैसे कमाना उनका जीवन का उद्देश्य होता है। जो इसमें फंसे हुए हैं वो क्या भगवान का भजन करें? सुखदेव गोस्वामी ने कथा कही, उसके लिए कुछ लिया? उनको तो कपड़े की भी जरूरत नहीं, हम लोग तो कपड़े भी पहन लेते हैं, कपड़े की जरूरत नहीं। 7 दिन तक पाठ किया, लोगों ने सुना और उनको सांत्वना दे करके बस जैसे नंगे के नंगे चले गए। उनको पैसे से क्या जरूरत है? उसे आत्मा का कोई संबंध नहीं। इसलिए कहते हैं सवई पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति रधोक। ऐसे कृष्ण के प्रति, परम पुरुष के प्रति, भगवान के प्रति अहेतु की बिना किसी कारण के, जैसे तैलोद्धारावत अविच्छिन्न गति से एक मधु की धारा ऊपर से गिराइए तार लग जाए, वैसे दिन रात अपने चित्त वृत्तियों को भगवान की तरफ में लगाने का नाम इसको कहते हैं भक्ति। यही प्राणी मात्र के लिए परम धर्म है, और कोई धर्म नहीं। चाहे आप गृहस्थ में रहिए, चाहे आप संन्यास लीजिए, चाहे ब्रह्मचारी रहिए या जिस रूप में रहिए, यही जीव मात्र के लिए परम धर्म है। कहते हैं यदि कोई व्यक्ति भगवान के लिए विशेष करके कलयुग में नाम संकीर्तन करे और अपनी चित्त वृत्तियों को भगवान की तरफ में चिंतन करने के लिए मोड़ दे, तो सबसे पहले उसे संसार से वैराग्य आएगा, जरूर आएगा निश्चित रूप में। 10 दिन भी यदि कोई शुद्ध रूप से नाम संकीर्तन करे, भगवान की चर्चा करे, भगवान का पूजन अर्चन करे, जरूर उसके अंदर में वैराग्य आएगा ही, और साथ ही साथ में उसको तत्व ज्ञान भी आएगा। लाने की जरूरत नहीं होगी, भगवान की भक्ति ऐसी ही है, वैराग्य भी आएगा। जैसे बतलाया सुखदेव गोस्वामी ने या सुध गोस्वामी ने बतलाया, आप खाते हैं, प्रति ग्रास खाते समय ही आपका पेट भरता जाता है और शरीर में संतुष्टि होती है, जहाँ मैंने खाया शरीर में कुछ शक्ति भी आती है, और जितने परिमाण में खाया अब खाने से विरक्ति भी आती, दूर हो जाती है। जैसे 15 ग्रास आप खा सकते हैं, और जहाँ 15 ग्रास खाया पेट भर गया, कुछ देगा तो आप खाएंगे, नहीं खाएंगे वैराग्य अपने आप आ गया खाने से। वैसे ही तत्व ज्ञान आने से, संसार में वैराग्य आने से और भगवान की भक्ति होने से अनुभूति होगी, चित्त प्रसन्न रहेगा और कोई चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसी ये भक्ति है, जो भगवान का भजन कर रहा है उसको किसी चीज की आवश्यकता है, भगवान की भक्ति को छोड़ करके समझो जे वो संत नहीं है। पहले निशान, सब समय प्रसन्न रहेगा, उसके सामने कोई भी समस्या नहीं। प्रहलाद महाराज जी को क्या छोड़ दो, अभी मीराबाई को 20 दिया, कहा जे ये चरणामृत है, तो उसने क्या किया, पी लिया, उसके लिए अमृत ही बन गया। सांप का पिटारी, सांप को पिटारी में बंद करके भेजा, जो इसमें शालग्राम शिला है आप इसका पूजन करो, और जब उसके घर में हाथों में दिया गया, खुला तो ढक्कन देखा जो शालग्राम ही शिला है। एक साधारण ये मीराबाई को देखिए तो और भक्तों की तो बात ही क्या है, उसको कोई समस्या नहीं हो सकती। समस्या आने से ही समस्याओं के सिर पर पैर रख करके चलेगा, वो सब समय प्रसन्न रहेगा। भक्ति है और प्रसन्नता नहीं है, और उसको वैराग्य संसार से नहीं आया तो वो भक्ति नहीं है, उसमें कुछ गड़बड़ है। इसलिए भक्ति के बहुत से प्रकार भेद हैं, शुद्ध भक्ति एक दूसरी चीज है, वो दूसरी चीज है। वो आत्मज्ञान अपने आप होगा, संसार के प्रति उसकी सब जगह भगवान का दर्शन करेगा और सबके प्रति आदर करेगा, तो जरूर वैराग्य आएगा और जरूर उसको तत्व ज्ञान भी हो जाएगा। वो संसार के किसी भी वस्तु के प्रति उसका लोभ मोह माया ममता नहीं रह जाएगी, ये मेरा है और मैं ये हूँ, ये भाव नहीं रहेगा, तो भगवान ही हो गए सबके, तो सबके प्रति उसकी भावना आ जाती है। भगवान की कथा ही ऐसी है कि जो सुनने वाले हैं उसके अंदर में भगवान खुद प्रवेश करके कथा के माध्यम से उसके हृदय को निर्मल कर देते हैं। यदि हृदय निर्मल नहीं हुआ तो समझो जो हरि कथा नहीं सुना, तो इस कान से सुनते हैं, इस कान से बाहर कर देते हैं। भगवान की कथा ऐसी ही है, यदि झाड़ू लगाने से घर साफ नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, झाड़ू लगा नहीं, ऊपर से ऐसे कर करके कोई चला गया, और झाड़ू देंगे तो साफ होगा ही। ऐसे ही हृदय निर्मल होगा, हृदय निर्मल माने क्या, कोई भी संसारिक वस्तु की कोई आवश्यकता न रहे, बस कृष्ण की सेवा मिले, ऐसी भावना आ जाए, थोड़े दिन में धीरे धीरे अनर्थ दूर होंगे, उसकी भक्ति बढ़ती चली जाएगी और अंत में भिद्यते हृदय ग्रंथि छिंदन्ते सर्वशंशय, उसका सारा जितना है संदेह दूर हो जाएंगे। भगवान के चरणों में अविचल भक्ति होगी, उसे किसी प्रकार की शंका नहीं रह जाएगी और संसार की कोई भी चीज के प्रति उसकी ममता नहीं रह जाएगी, इच्छा नहीं रह जाएगी। हनुमान जी ने अपना घर बनाया कहीं, शादी की, कुछ बैंक बैलेंस किया, क्या किया? हाँ, बैंक बैलेंस किया कौन सा, भगवान की सेवा करके उसको। आज तक भी वो अजर अमर हैं, कभी जीवन ने अपने लिए कुछ चाहा नहीं। कभी सीता जी ने राम के कहने से उनके गले में एक नौलखा हार पहना दिया और हनुमान जी उसे दांत से काटने लगे और तोड़ करके फेंक रहे। सभी लोग हंसने लगे। रामचंद्र जी ने कहा, ये जानते हो कितनी कीमती चीज़ है और तुमको सीता जी के गले से दिलवाया और तुमसे तोड़ करके फेंक क्यों रहे? शायद बंदर हो, नहीं समझ सकते। बंदर नहीं समझते हैं आधा का स्वाद, अदरक का स्वाद। तो ऐसे नहीं समझ रहे। उन्होंने कहा जी नहीं, बात ऐसी नहीं, मैं इसमें देख रहा है इसमें राम नाम है कि नहीं। तो जिसमें देखता हूँ राम नाम नहीं है वो उसका कोई भी मूल्य नहीं। तो तुम्हारे हृदय में है, बस नख लगाया और ऐसे चीर दिया, देखा जी राम 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 सर्वत्र। ऐसे लोग जिनको कोई भी संसारिक वस्तु की लालसा नहीं रही, वो लोग सुखी रह सकते हैं, दूसरे सुखी नहीं रह सकते हैं। इसलिए आप लोग भी कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधार, नाम में भगवान ने अपनी सारी शक्ति दे दी है। ये भगवान ऐसे हैं, अखिल प्राणियों के अंदर में वास करते हैं और अखिल प्राणी उनमें वास करते हैं। सारी शक्तियों के शक्तिमान वो प्रभु हैं, चाहे तो एक सेकंड के अंदर में ऐसे ऐसे कोटि कोटि विश्वों का प्रलय कर सकते हैं, ध्वंस कर देंगे और नए विश्वों का सृजन कर देंगे। बड़े करुणाशील हैं, कृपालु हैं। ये सारी शक्तियाँ कलयुग में नाम में भर दी है। जो स्वरूप से नहीं कर सकेंगे वो नाम से कर देंगे। एक उदाहरण के लिए देखिए, एक आदमी को सांप काटा और वो मरने मरने हो गया, करीब करीब प्राणी मर ही चुका है और कोई मंत्र जानने वाला आया और झट ऐसा किया, मंत्र पढ़ा, सांप का विष उतर गया। यदि ऐसा संभव है तो हरि नाम जो महामंत्र है, मंत्र नहीं, और उसका साधन करने वाला उसकी अनुभूति नहीं कर सकता, उसके फल नहीं होंगे, तो इसका मतलब है जो हम नहीं कर रहे हो ऐसा। आत्मा पर भी उसका प्रभाव होता है, शरीर की तो बात ही क्या। इसलिए नाम में ऐसी शक्ति है जो कृष्ण के स्वरूप में है, उससे भी अधिक शक्ति है, ऐसा समझ करके गुरु का दिया हुआ मंत्र और ये महामंत्र हरे कृष्ण अच्छी तरह से कीजिए, जरूर फल होगा। किंतु जिस रूप में करना है उस रूप में कीजिए। स्कूल में नाम लिखाया पढ़ने के लिए, नाम तो लिखाया, कभी कभी हाजिरी भी देते हैं, किंतु क्रिकेट दिन भर रात भर खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो पास कैसे हों? ऐसे ही गुरु ने मंत्र दिया, उसका प्रोसेस बतलाया और वैसे नहीं चलेंगे तो आपको अनुभूति क्या होगी? हम लोगों को गुरुदेव ने दिया, हम लोगों ने उसी प्रोसेस को अपनाया, कुछ हम समझ रहे हैं, उस उपलब्धि कर रहे हैं। तो आप लोग यदि थोड़ा भी नहीं करेंगे नाम, कैसे उपलब्धि होगी? इस मंत्र की सिद्धि के लिए वाल्मीकि जी ने कितना 60,000 वर्ष मराम राम 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 मरा से आरंभ किया और राम राम करते करते विश्व के पूज्य बन गए और भूत भविष्यत के जानने वाले बन गए। रामलीला के पहले ही रामलीला लिख दिया। व्यास जी क्या हुआ? व्यास जी अपने गुरु के दिव्य मंत्र के प्रभाव से भगवान की सारी लीलाएं पहले ही दर्शन करके और भागवत में लिपिबद्ध कर दिए। इसलिए इन मंत्रों पर विश्वास रखिए जो गुरु ने दिया, और उसको विधिवत उसको कीजिए। और विधिवत नहीं करेंगे, विश्वास ही नहीं हुआ, विधिवत नहीं करेंगे दिन भर तो घर के काम में अंट शर्ट के कामों में जिससे कि प्रॉब्लम ही आएंगी वही कर रहे हैं, वो मंत्र करने की का समय नहीं, जपने का समय, चिंतन करने का समय नहीं, और उसका फल भी चाहते हैं, नहीं होगा। जैसा कहा वैसा कीजिए, देखिए जरूर आएगा। यदि ऐसा करें कुछ दिनों में जरूर वैराग्य आएगा। वैराग्य माने क्या? इससे हमारा कल्याण नहीं होगा, ये विष के समान है, ये आएगा। और साथ साथ में भगवान की भक्ति भी आएगी, चित्त प्रसन्न रहेगा। परीक्षित महाराज जी ने सुना, 7 दिन तक सुना, किंतु सांप ने काट लिया, डस लिया और वो मर गए ना, मरे कि नहीं 7 दिन के बाद? मरे नहीं, यही किसी को पता नहीं। अपनी आत्मा से सांप के काटने के पहले निकल करके चले गए भगवान के धाम में, ये बहुत लोग, कम लोगों को पता है। वो तो जो भागवत को अच्छी तरह से पढ़ता है गुरु से, वो समझते हैं आत्मा अजर अमर है, इसलिए वो मरने का प्रश्न नहीं है। इसलिए परीक्षित महाराज मरे नहीं इतना दिन सुन करके। भागवत का सुनने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं मर सकता, इसलिए वो नहीं मरे, बल्कि भगवान ने अपनी योग माया की शक्ति से दिखलाया, उन्हीं जैसा एक शरीर रख करके, और वो तो परम धाम में चले गए। इस पर विश्वास रखिए, और विश्वास के साथ में कुछ दिन नाम कीजिए गुरु का दिया मंत्र को, उस प्रोसेस से कीजिए, विशेष करके हरिनाम कीजिए, चलते फिरते उठते बैठते नाम कीजिए, देखिए जरूर आप कुछ अनुभूति करेंगे निश्चित रूप में। समस्त उपदेशों का सार श्रीमद्भागवत में एक ही श्लोक में बतलाए, अकामो सर्व कामो मोक्ष काम उदार दी तिब्रेन भक्ति योग जजते पुरुषम परम, और नाम संकीर्तन के माध्यम से ही उनका सब कुछ हो, समस्त पापों को दूर कर देगा, चित्त को प्रसन्न कर देगा और संसार से तार देगा। इसलिए नाम कीजिए, जिस किसी भी संप्रदाय के हों, पुरुष हो, स्त्री हो, बच्ची हो, विवाहित हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, कोई भी हो, बस भगवान का नाम करो। अब विशेष करके कलयुग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, आज ही से आरंभ कर दो। किंतु एक शर्त है, यदि शर्त को पूरा करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, और यदि शर्त को नहीं कर करके ऐसे करेंगे तो कुछ विलंब होगा। जैसे प्याज लहसुन मांस शराब धूम्रपान इत्यादि करते हुए करेंगे तो बहुत विलंब लग जाएगा, और यदि इन सब को छोड़ करके निर्मल हो करके खान पान अच्छा सात्विक हो, भगवान का अर्पित हो, चित्त शुद्ध रहेगा और नाम कीजिए, देखिए थोड़े दिन में ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, आप लोग जीवन में अवश्य सुखी होंगे, आपके पूर्व जन्म के जितने खराब कर्म हैं वो सब कुछ, यही सब का सार है। अब तो 8:30 बजने भी जा रहा है, बहुत मेरे लिए देरी हो जाएगी। आप लोग इन सब चीज़ों का पालन करते हुए जरूर हरिनाम करें, विशेष करके हरे कृष्ण, यही समझिए हमारी ये दीक्षा ही हो रही है। इसलिए आप लोग हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। और अच्छा हो कि ये प्याज लहसुन पान बीड़ी सिगरेट धूम्रपान ये सब छोड़ करके किसी शुद्ध वैष्णव से ये हरिनाम लेकर और इसको करें, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं। आप घर में बैठे रहें वहीं से करें, वहीं से होगा, कहीं घर छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पर हैं, जिस स्थान में है, जिस काल और देश में, वहीं से हरिनाम कीजिए, आप लोगों का कल्याण होगा। मैं इससे अधिक मैं आज नहीं कह सकता, अधिक रात होने से हमारे लिए भी असुविधा होती है, इसलिए आप लोग हरिनाम कीजिए, जीवन में सुखी रहिए, भगवान का भजन कीजिए। गौर प्रेमानंदे गौर पृष्ठाय भूतले
श्रीमद भक्ति प्रज्ञान की सवैति नामी अतिमत्र चरित्राय श्वासितानंच पालिने जीव दुखे सदार्थाय नाम प्रेम प्रदायिने नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतु तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नय मां चरणान्ति मयि thousands and thousands of obeisances in the lotus feet of my spiritual master Aung Vishnupad Nitya Lila Pravishta Sri Srimad Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj and send thousands and thousands of my humble obeisances in the lotus feet of my Shiksha Guru नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज परहैप्स यू नो आर नॉट दैट आई हैव सो मच थिक कनेक्शन एंड रिलेशन with Eshi Bhaktivedanta from 1946. At that time he was not taken sannyas renounce order and also there was no birth of ISKCON. There were no any devotee. He was Eshi Bhaktivedanta, like a manager of Bengal Chemical in India, Calcutta. At that time, he was householder, very gentleman, coming from a aristocratic family and like a gentleman babu, Bengali babu. Bengali babu, you know?
Abhay babu.
Abhay babu. The very humble Abhay babu. Почитаемый, почтенной личностью из аристократической семьи, аристократического происхождения, которого все уважали. Он был домохозяином.
At that time he was in his worldly family, wife, children, sons, and making so much money. But he was very famous in Gaudiya mission. Very high class of devotees of or disciple of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Srila Prabhupada.
Но при этом он был очень знаменит в миссии Гаудии как очень возвышенный и продвинутый ученик Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакура.
At that time he was quite young, very beautiful,
очень красивый.
Very joking and lovely to all. So from 46 I know him well, and from then, though I was brahmachari and he was family man, still I was serving by the order of my Gurudev to him. I was also present in the Utsav,
festival.
A festival, when he took sannyas, renounce order. I requested him personally to take renounce order. Though he was very closer friend of my Gurudev, and he was junior to my Gurudev, and very thick friendship was between them. So I told him, I requested my Gurudev, oh, try to please be merciful and inspire him to take sannyas, renounce order. When he came to Mathura, about in 1954, nearby he came. At that time he was penniless. No money, no clothes, no garments, nothing. He came in a very poor state. And then, but I used to know him, was very much qualified. A learned person in Srimad Bhagavatam. So my Gurudev told him, oh, you should not waste your time and you try to fulfill the desire of your Gurudev to preach in Western countries in English, make so many newspapers, periodical papers, and you should go here and there and preach, and then he took sannyas. I was there, I was priest. I made his danda. I made his clothes. Oh, the saffron clothes. He did not knew to, how to wear. I taught him, how to take danda, how to wear this uttariya like this, how to door coffin, everything.
Когда он пришел в наш Матхам Атхуру в 54 году, он был очень беден, у него ничего не было, даже чагра. Но я знал его очень давно, я знал, что это очень возвышенный преданный, и мы приняли его со всем уважением. И потом я попросил моего духовного учителя, чтобы он вдохновил его принять саньясу, и мой Гурудев дал ему саньясу, и я проводил церемонию саньясы, и я учил его даже, как одевать одежду саньяси, потому что он не знал, как носить уттарию, как принимать данду, и поскольку я был саньяси до него, я показал ему все эти вещи, я сделал своими руками данду для него.
His words are coming to you?
Вы слышите мои слова?
He took sannyas. He told so many things, like friends. We are bosom friends, though he was my Shiksha Guru. At that time my age was 24, right? Quite young. And his age was about more than 50. But you used to talk friendly. Or so much joking each other, happy, laughing. He used to hear my kirtan. At that time my voice was so sweet.
I was most popular in Kirtan at that time. All Gaudiya Math.
И мы часто сидели вместе, шутили и смеялись, и у нас были очень сердечные беседы друг с другом. И он очень любил слушать, как я пою, он просил меня петь, потому что в то время у него был очень сладкий голос, и я был известен во всем Гауди Манхи как самый лучший киртанье.
He was very fond of Sankirtan, very fond. He used to give classes of Srimad Bhagavatam, so beautiful and in learned style. Each word meaning, Anvaya, as he has written Gita or Srimad Bhagavatam, translated, in the same way, explaining each word, word to word.
Он был очень образованным и ученым вайшнавом. Он часто давал лекции по Бхагаватам, и он давал лекции по Бхагаватам очень демонстрируя свою ученость и философию. И он объяснял смысл каждого слова, каждой шлоки, анвая.
He has a strong desire to come to Western countries. But penniless. Anyhow, he managed to come to New York, New Jersey first and then New York, in 22nd Avenue. He wanted to take me with him to preach. He requested so many times, oh, you should come with me, we will both friends, we will preach in Western countries. I requested him that I will come, but now I am serving my holy master, my Gurudev. And everything depends on me in Mathura center, preaching center. So I will come, but after some time.
Я пообещал ему, что я обязательно приеду, но через некоторое время. Потому что сейчас я должен исполнять миссию и указания, которые мне дал мой духовный учитель. И развивать храм в Мадхуре, который он отдал под мое попечение.
Oh, he requested me also that I am going. But please help me. Please send my all books, my kartal and mridanga, my ditties, everything, sweets. Especially he has so much books in rotten condition, full of dirt and everything. So I arranged them to send, but I became sick. Dust came in my lungs and it was defected. But anyhow, I did everything. I sent his all books and he used to write me every 15 days some letters. What is going on? How he is preaching? How he is doing? How he came to America in a boat, in a navigation boat? And that he became so sick there. Anyhow, Krishna has given his life. So he sent me more than 400 letters, inspired. And he wrote that we have transcendental relation.
И когда он уезжал в Америку, он просил меня, чтобы я помогал ему и посылал ему разные вещи. В частности, он просил послать ему все его книги постепенно, и его божества, музыкальные инструменты. Я начал все это делать, но книг у него было очень много, и все они были очень испорченном состоянии, потому что время не пощадило их, и они были наполнены пылью. И в это время я заболел, потому что пыль, она проникала мне в легкие, и я заболел, но тем не менее продолжал высылать ему все это. И в конце концов он получал все то, что я ему посылал. И он каждые две недели посылал мне письмо, в котором он описывал, как идет его проповедь, как она развивается, что он делает сейчас, каковы его планы на ближайшее будущее. В целом он прислал мне за всю историю нашей переписки около 400 писем.
Very soon, by the mercy of Godless mercy of Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivas Adi Sri Gaur Bhakta Vrinda and Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Oh, causeless mercy of two songs. Very soon he established so many centers, preaching in the whole world. He translated books. This was distributed in so many languages. And very soon in whole western and eastern countries, so many preachers centers were established and so many devotees. He became happy and am very happy that one of his very
senior
and sincere one devotee or two devotees are here. Among them, prominent is Shyamrani, Jadurani. She and her husband, Satsarup Maharaj, were hippie. Oh, very good hippie. And they became what?
So happy.
Now they are preaching whole world. The mission of his Guru, her Gurudev is preaching.
И Шрила Прабхупада писал мне в своих письмах, что наши отношения с ним находятся на трансцендентном уровне, мы никогда не сможем забыть друг друга. И он описал, как он проповедует на Западе, как по милости Панчататва Махамантры и Хари Кришна Махамантры, которые он проповедует повсюду, тысячи и тысячи молодых людей приходят к нему, и как за счет этого он... За счет своей веры, силы святого имени, он распространил святое имя по всему миру, по всем западным и восточным странам, открыл столько центров и храмов, и написал, и напечатал, распространил миллионы книг.
Thus, in couple of years, he preached everywhere, very strongly. At that time, you should know that he has not come from India for money, reputation. He left everything. He has not come to collect any money. Only to give the mission of Srila Chaitanya Mahaprabhu and his Gurudev Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Only to give.
Туда, в Америку, из Индии, вы должны знать, что он приехал не за денег, не за славы. Он приехал только из единственного желания исполнить миссию его духовного учителя Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупады.
And that is why, in couple of years, everywhere in eastern and western country, he preached the glories of Radha and Krishna conjugal and preached the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Rupa Goswami. Only by the process of Sankirtan, Nagar Sankirtan, and chanting and remembering of Krishna, you can be happy. Otherwise, never and never.
Воспевание и служение лучшим стопам Божественной Читы. И он очень ясно дал понять всем, что только поклоняясь и служа, мы можем быть счастливы. И мы никогда не будем счастливы ни в каком другом случае.
I cannot touch his glory. Only I told some little to touch the glory. If we can glorify him, thousand years and years, but it will not be completed.
Действительно, я не могу по-настоящему осознать его величие, и я не могу прикоснуться к его подлинной славе. Сейчас я просто попытался дать почувствовать небольшую капельку Его величия, Его славы. Мы можем прославлять Его тысячи и тысячи лет, и не закончится это прославление.
Oh, in His last days, when His preaching was completed, not full completed, but anyhow, everywhere. In the last, He returned to India. At that time He posed to be a Sikh person. But He was never Sikh. His soul is immortal. How He can be Sikh? He is some eternal servant, associates of Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gaur Nityananda Prabhu. But at that time He called me His senior devotees, like Bhavananda, Tamal Krishna, Brahmananda, Jayatirtha, or so many prominent leaders went to me and requested that our Gurudev wants to meet at once. He is ready to join Golok Vrindavan.
И в конце своего пребывания на этой планете Шрила Прабхупада он казал, что он заболел, и поэтому он поехал в Индию. И на самом деле он не может заболеть, потому что его душа вечна, и он является вечным спутником Чайтаньи Махапрабху и Рады Кришны. Но по некоторым причинам он решил вернуться в духовное лицо Господа. И в то время он позвал меня к себе. И его старшие ученики, такие старшие лидеры движений, как Бхавананда, Киртанананда, Тамал Кришна, и так далее, они пришли и позвали меня, сказали, что их духовный учитель Шрила Прабхупада зовет меня к себе.
О, I remember the day he has stopped to speak anything. He closed his eyes, sleeping on his bed. At about in evening 8 p.m. He came in senses, and he took my hands in his hands, began to weep, tears coming, and he indicated me to sit down on his cot. But I did pranam to him and sat on another chair. And then he began to tell something.
Я сидел рядом с ним, и около 8 часов он открыл глаза. Когда он увидел меня, он немножко приподнялся и взял мои руки в свои руки, и слезы потекли у него из глаз. И он сразу же хотел посадить меня рядом с собой на постель, но я поклонился ему и сел рядом поодаль на стуле.
He told me that I have preached whole world. I have brought so many disciples from all over the world, thousands and thousands. But I am worried now, I could not taught them real bhakti. I request you to help them. Or even he told in Bengali language or Hindi that any of his disciples could not understand. So he spoke in
Bengali
that I have brought so many monkeys from whole world. I could not taught them. Oh, the mission of Chaitanya Mahaprabhu so high. I tried hard. So I request you, please train them, help them. I told that this request I am keeping on my head. I will follow and I will help them. They should not quarrel among them.
И тогда Шрила Прабхупада сказал мне, он сказал, что я привел столько учеников, тысячи и тысячи учеников Запада, но у меня не было времени научить их всему. И потом он начал говорить мне на Бенгале, что другие...
Renounce GBC member, all members. And he told that oh, very carefully you should listen to Narayan Maharaj and try to follow him. And then I told, oh, you should try to know that Gurudev, Sadguru never dies.
Я сказал, пожалуйста, помните, что садгуру никогда не умирает.
A садгуру never becomes sick.
Садгуру никогда не болеет, он не может заболеть.
Oh, he has come to fulfill the wish of his Prabhu.
Он пришел в этот мир, чтобы исполнить желание своего Прабху.
Now he is somewhat that thing he has been finished to some extent.
Сейчас он до определенной степени исполнил это желание, эту миссию.
So he is going to serve his Radha Krishna conjugal.
Сейчас он возвращается, чтобы служить божественной чите Радхи Кришне.
You should not think that he is going to die or he will die.
Поэтому ни в коем случае не думайте, что он умрет.
He is omnipotent. Omniscient and omnipotent.
Потому что он всемогущий, всезнающий.
So I think that you should try to maintain and continue his mission.
Поэтому вы должны поддерживать и развивать его миссию.
How you can do? Don't quarrel with for money. Don't quarrel for women. Don't quarrel for position. Always preaching as you are preaching. Don't run after wealth and reputation.
Нет, я сказал, ни в коем случае не ссорьтесь из-за денег, власти, положения или славы. Вы можете исполнить, продолжать развивать миссию вашего Гурудева, только если вы будете свободны от этих устремлений. И просто будете проповедовать его миссию, его учение по всему миру.
Don't try to be a member of GBC. But you should be try to be a servant of GBC and real ISKCON, Krishna consciousness.
Не старайтесь стать GBC или занять какое-то особое положение. Старайтесь быть слугой GBC и истинного ISKCON.
If you all quarrel themselves yourself, you will be ruined, and you cannot fulfill the mission of your Gurudev. You cannot serve.
Если вы будете ругаться и спорить друг с другом, то вся ваша жизнь будет разрушена, и вы не сможете исполнить миссию вашего духовного учителя, и даже не сможете спасти себя.
But sorry, they never tried to fulfill this desire of their Gurudev, and thus nowadays very unpopular in whole world.
Но, к сожалению, они по-настоящему не пытались исполнить это желание своего Гурудева, и поэтому, к сожалению, ИСККОН сейчас во всем мире очень непопулярен.
Oh, there were so many qualified and aged devotees in Vrindavan. His all GBC members were there. Even his elder brother, Ban Maharaj, Shripad, Pujyapad, and so many were there. But he picked me and told me, requested me that you should give me
samadhi.
Oh, my samadhi. I want that with your own hand and with your knowledge and everything, you should give me samadhi. This was the last order.
И в то время во Вриндаване было очень много старших саньяси, учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Прабхупады. В том числе, например, там был даже такой знающий и всеми уважаемый саньяси, как Шрипад Бхал Махарадж.
О, Кришнадас Бабаджи, and so many were there.
Там также был Акинчана Кришнадас Бабаджи Махарадж, и многие-многие другие, которых Прабхупада ценил, Но тем не менее из них, из всех их он избрал именно меня и позвал меня и попросил именно меня положить своими руками его тело в самадхи после того, как он оставил этот мир. Это была его последняя просьба.
I followed his order with my own hand. And with Vedic culture, I gave his samadhi in Vrindavan with my own hand. So I carried his order, gave samadhi also. And now last his request was to help his devotees. So I saw that everywhere now he has planted so many plants everywhere in the world. Or some plants seeds have been
sprouts.
Some more that, some shraddha. But no water, now they are drawing. And I requested my Gurudev, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami, and all our Guru Parampara, and especially to all this Mahapurush, this Swamiji, that you should inspire me so that I can take water from you. What water? Bhakti water. And I can give water to all the plants, and they should have a new life.
И тогда я попросил Шри Чайтанья Махапрабху, моего Гурудева и всю Гуру Варгу, и особенно этого великого Махапуруша Шрила Бхактивинода Свами Прабхупады, чтобы они помогли мне исполнить это желание Шрила Прабхупады, и чтобы я мог взять ту воду, которую принес сам Шрила Прабхупада, и полить им же самим посаженные семена.
So my coming to these western and eastern countries only to help the Swamiji's devotees only. Oh, I don't want money. I don't want any position. I don't want reputation. Anything I don't want. Really, I want to carry the orders of my Guru and Shiksha Guru.
Мне не нужны деньги, мне не нужно положение или последователи. Я прихожу сюда только для того, чтобы исполнить указания своего Дикшигуру и Шикшигуру.
I'm very happy that now everywhere in western and eastern countries, wherever I go, thousands and thousands of devotees coming to me, to listen me, to hear me. Now they are so much inspired, and now they have so much
life
now. Oh, I know that so many who left ISKCON, who left devotion, ISK and chanting and remembering, they return to their bad lives. Now coming again. Oh, you can see so many senior devotees who they left ISKCON. They have no faith in ISKCON. And now thousands and thousands have coming to hear me. And again so much enthusiasm in chanting and remaining and preaching again. So my request is to you all. Have a new life. And the devotees at the time of Srila Maharaj, Swamiji, as they were so inspired, preaching here and there, with very energetic way, I request you to be the same, and to follow the the orders and follow the teachings of Swamiji. You should see me like a representative of your Gurudev or Srila Bhaktivedanta, Eshi Bhaktivedanta, or representative like. You can meet me freely. You can talk with me freely. You can question any doubt you have, or freely you can come to me. I will try to help in all ways. Don't fear. I'm not a
lion
or ghost.
Свободно задавать мне любые вопросы и любые сомнения, которые у вас есть. И я вам обязательно помогу. Не бойтесь меня, я не лев, и не тигр, и не привидение. Я всегда готов помочь вам, если у вас есть какие-то вопросы. Или...
You are so much fortunate that so good preachers like Urukam Prabhu, Shyam Rani, oh, Vrindavan Vilasini, Gyandas Prabhu, very good preacher, oh, Dhrishtadyumna, he preached all over Brazil, here and there, he was also in this area in England, so many years, so many years, oh, you know Jeev Pawan, you know all others, oh, so all are very good preachers. Krishna Bhajan Prabhu. And now, oh, Upanand, where? Oh, very good preachers. Very good preachers. And my helpers. I am penniless, more penniless than Swamiji. And he had taught me how to preach. And how not to fall down. He has taught me. So, I request you to hear very patiently and carefully and to know the object of life for which he came. Rest we will speak in our evening classes or morning, tomorrow, and thus we are here for so many days. I have come only to inspire you and to give a new life and to help you. So I will try to produce the teachings of Rupa Goswami, Mahaprabhu, Rupa Goswami and all these things. And try to take it very responsibility and very strongly all these things. And be
developed
in Krishna consciousness. Gaur Pramanande
Guru.